एनम पृष्ठतो भेदी सधनु परिपालयन। इसी प्रकार से भरत के साथ में शत्रुघ्न जी रहते थे। शत्रुघ्न जी को तो भरत जी को तो शत्रुघ्न प्राणों से भी ज्यादा प्यारे लगते थे। ऐसे चार भाई और दो दो आपस में बटे हुए थे। इनका आपस में इस प्रकार का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगता था। इन चारों भाइयों में समय पर इनको लज्जा आती थी और ये जो है बड़े सौम्य प्रकृति से खेलते थे। बाल्यकाल का इनका जो खेलना दौड़ना किलकिलाना ये सबको बड़ा सौम्य लगता था, अच्छा लगता था। स्वाभाविक इनकी बाल क्रीड़ाएं होती थी। वे सदाई अपने पिताजी की सेवा करते थे। और बड़े होने के बाद में इधर पिताजी ने विचार किया, शरीर का पता नहीं है, मेरा शरीर तो बहुत अवस्था को प्राप्त हो गया, क्या पता कब संसार से चले जाए। बेटा तो हो गया, अब एक हमारे एक इच्छा और है, इन बेटों के शादियां हो जाए, छोटी छोटी बहुएं आ जाए घर में, बस फिर मर जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा वो मन में विचार किए थे। परंतु भाई उसी समय में एक दिन अकस्मात विश्वामित्र जी महाराज आ गए। विश्वामित्र जी महाराज आए, चिंतयामास धर्मात्मा। विश्वामित्र जी आए, राजा को कहा, महाराज बड़ी प्रसन्नता की बात है, महाराज विश्वामित्र जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओहो विश्वामित्र जी, आप विश्वामित्र जी के लिए प्रतीक्षा को उनके स्वागत के लिए गए। आगे आगे गए, राजा सम्मान किया, वशिष्ठ जी भी गए, खूब सम्मान के साथ विश्वामित्र जी को अपने यहां लेकर के आए, अपने महल में लेकर के आए, राजभवन में लाए, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया और बड़ा उनका स्वागत किया कि महाराज आज तो मेरे पुण्यों का उदय हो गया। आदमी को अपने पुण्य का ज्ञान कब होता है, जब उसको कोई संत महात्मा के दर्शन होते हैं तब पता चलता है, अरे हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया था, नहीं तो क्या पता चले। हमने पहले पुण्य किया कि पाप किया इसका पता क्या चले, पता यही चले कोई दुर्जन आदमी मिले तो भाई इसका मतलब हमने पाप किया था और वो पाप हमको नहीं करना चाहिए। सज्जन मिले, महापुरुष मिले तो फिर तो कहना ही क्या है। तो महाराज मुझे अब पता चला कि मैंने कोई पुण्य का काम किया है, क्यों तभी तो आप जैसों के दर्शन होते हैं। महाराज बड़ी कृपा किया, वो बोलिए आप सब प्रसन्न तो हैं, जहां भी हैं आप प्रसन्न हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर कहने लगे, महाराज हम तो प्रसन्न हैं, आप कैसे हैं? आपके राजा में, आप प्रजा में, आपके मंत्रियों में, आपके कोष में, आपके भाई बंधुओं में, सब प्रकार से आप कुशल पूर्वक तो है, कोई राज्य में अमंगल तो नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। देखो महाराज आपने बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ के द्वारा आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है। वशिष्ठ जी महाराज जैसे ऋषि आपके पास में विराजमान है, उनके निर्देशन में आप चलने वाले हैं, अतः आपके जीवन में अच्छे कर्म क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। आप समय का ठीक विभाग करने वाले हैं, आपने पूजन किया है देवताओं का, सबका पूजन किया है, आप महान जो है सत्कर्म का उपदेश देने वाले हैं। उसके बाद राजा ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र जी मैंने यज्ञ किया उसका तो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे जो ये पुत्र मिले हैं, ये पुत्र तो मिले, ये मुझे बहुत आनंद देने वाली बात है। जिस प्रकार कोई आदमी मरता हो और मरते मरते उसके होठों में, उसके मुंह में कोई ठंडे ठंडे अमृत के घूंट यदि उसके मुंह में डाल दे, कैसा उसको अच्छा लगता है। ऐसे हमको बड़ा अच्छा लगा, हमारे पुत्र हमको मिले। असल में महाराज मेरा जीवन नष्ट होने वाला है, लेकिन मैं बिना पुत्र के अपूता होकर के मरता, देखो कैसे भगवान ने मेरे पर कृपा की है। ओहो अच्छा महाराज आप कोई विशेष कारण से पधारे होंगे, बोलिए महाराज आप जो भी कोई आपके मन की इच्छा है आप खुल करके बताइए, मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। पात्र भूतो आपने कुछ न कुछ मुझे योग्य ही तो समझा, तभी तो आप यहाँ अयोध्या पधारे, तो और कहीं चले जाते। आपने मुझे जिस काम के लिए योग्य समझा और मुझे आपने चुना, तो मैं बड़ा धन्य हुआ हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा है, आज की रात मेरे लिए कितना अच्छा प्रभात लेकर के आई है। आज आपका स्वागत हो रहा है महाराज। पहले आपको राजर्षि बोला जाता था, अब हम सब आपको ब्रह्मर्षि के रूप में बोलते हैं। बताओ, संसार में आपके अलावा एक शरीर में राजर्षि और महर्षि कौन बना है? केवल आप बने हो। बड़ा पवित्र आपका ये स्वरूप। मैं तो महाराज अपने कुटुंब सहित, पुत्रों सहित पवित्र हो गया आपके दर्शन करके। महाराज आपके आने का जो कारण है वो खुल करके बताइए, मैं उस कार्य को पूरा करके रहूंगा। आप महाराज कोई संकोच मत कीजिएगा। करता चाहम अशेषेण, मैं आप जो आदेश देंगे वो सब काम करूंगा। कोई आप इस विषय में विचार मत कीजिए। मेरा तो अभ्युदय है महाराज कि आप मेरे पास में आए हो। आपके आने से मेरा धर्म अपने आप ही बढ़ गया, मेरा सौभाग्य बढ़ गया, मेरी कीर्ति बढ़ गई। लोग कहेंगे कि अच्छा, विश्वामित्र जी यहाँ आते हैं दशरथ जी से मिलने, तो विश्वामित्र जी आते हैं, मेरा यश बढ़ गया ना महाराज। इसलिए हे प्रभु, मुझे आप निसंकोच बताओ मुझे क्या करना है। इस प्रकार से हृदय को सुख पहुंचाने वाली बात महाराज दशरथ ने कही। उस बात को सुनकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी महाराज ने आगे उनको कहा, हे राज श्रेष्ठ दशरथ जी महाराज, कितना पवित्र आपका वंश है। आपके वंश में कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, और आप भी कितने सौभाग्यशाली हैं कि वशिष्ठ जी का आपके सिर के ऊपर हाथ रहता है। आप तो महाराज सब बात जानने वाले हैं। मेरे मन की बात तो आप जान ही गए होंगे ना, मैंने आज आपको क्यों याद किया है। मैंने बहुत सोच समझ करके आपको याद किया है हे राजा। फिर भी तुम यदि मेरे मुंह से ही कहलाना चाहते हो तो मैं तुमको बताता हूं कि देखो, मैं इस समय सिद्धाश्रम नाम के स्थान पर रह रहा हूं। वहां पर दो बड़े राक्षस आते हैं, एक का नाम मारीच है, एक का नाम सुभाव है। ये दोनों राक्षस अनेक प्रकार की माया से शिक्षित हैं, माया से कितने ही शस्त्र पैदा कर लेते हैं, माया से वे यहाँ छिपे हुए वहां जाकर छिप जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका। बहुत मायावी, बड़े बलवान, और बहुत से राक्षसों के साथ में आते हैं और आकर के हमारे यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं। यज्ञ के अंदर गंदी गंदी वस्तुएं वो डाल देते हैं, मांस डाल देते हैं, रुधिर डाल देते हैं, वर्षा करने लग जाते हैं। हम क्या करें? हम इससे बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के तो मैं आज मैं आपके पास आया हूं। आप ये कहोगे कि आप क्रोध क्यों नहीं कर लेते, साप के उनको भस्म क्यों नहीं कर देते? कि देखो महाराज, साप हम इसलिए नहीं देते हैं, एक तरफ तो हम अनुष्ठान करें, दूसरी तरफ हम साप दे दें तो वो अनुष्ठान करना जो है बेकार हो जाता है। अच्छा काम करें, क्रिया तो अच्छी है, लेकिन मन में भाव तो खराब आता है ना, राग द्वेष का। साप तो वही दिया जाएगा जहां कोई मन में द्वेष होगा नहीं। और ये यज्ञ आदि अनुष्ठान मन के पवित्रता के लिए किए जाते हैं। हम यज्ञ में बैठे हैं भाई, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हमारी मानसिक पवित्रता के लिए हम लोग अपने मन में क्रोध पैदा होने नहीं देते, और क्रोध आए बिना शाप वृत्ति नहीं होती, शाप दिया नहीं जाता, और शाप न देने पर वो मरेंगे नहीं। अतएव हमने ये विचार किया है कि आपका ये जो बड़ा लड़का राम है, ये हर दृष्टि से योग्य है, हमारी रक्षा करने में ये बड़ा प्रवीण है, इसको बाण चलाना आता है, इसको अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान है, इसको आप हमारे साथ भेज दीजिए, ये इन राक्षसों का वध कर देगा। देखो, मैं इसका बहुत बड़ा भारी मान बढ़ाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण त्रिलोकी के अंदर तुम्हारी भी ख्याति होगी और इस राम की भी ख्याति होगी। और राम के बिना ये मारीच और स्वभाव दूसरे से मरने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं सब चीज अच्छी तरह से जान करके आपके पास आया हूं। देखो यज्ञ तो मैं बहुत पहले से ही कर रहा था, लेकिन जब तक राम का जन्म नहीं हुआ तब तक हे दशरथ जी मैं आपके पास आया तो नहीं ना, तब तक मैं आपके पास नहीं आया। और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन दोनों को जो कि बहुत बड़ी ताकत वाले मारीच और सुबाहु, इनको राम ही बस में कर सकते हैं। देखो महाराज आपका चेहरा उतर रहा है, देखो महाराज आपके आंखों से ये आंसू निकलते हैं, इसका नाम मोह है। ये मोह मत आने दीजिए, मोह है यही जो है फसावट का कारण है। अहम वेदमि महात्मानम, आपको पता नहीं है क्योंकि आप मोह में, मैं राम की महिमा को जानता हूं। आपके पास बैठे हुए वशिष्ठ जी, आप वशिष्ठ जी से राम की महिमा जान सकते हैं। राम कौन है आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो राम को केवल अपना बेटा मानकर मोह किए हुए हैं। इस मोह ने ही तो भाई असली दृष्टि से वंचित कर दिया। यदि ते धर्म लाभम तो यशश्च परमम भूमि, यदि आपको इस संसार में जीते जी और मरने से पहले पहले यश प्राप्त करना हो, धर्म लाभ प्राप्त करना हो, तो आप राम को निसंकोच मेरे साथ भेजिए। मेरे पर विश्वास तो कीजिए आप राम का। अच्छा यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं हो तो वशिष्ठ जी से एकांत में बात कर लो, आप अपने मंत्रिमंडल को बुला करके उनसे विचार विमर्श करके और फिर मेरे को बता देना, मैं राम का किसी प्रकार से अहित नहीं करने वाला हूं। अभी प्रेतम असंसक्तम आत्माजम दातु मर्रसी, मैं जानता हूं कि राम के साथ में आपका बहुत प्रेम है और मैं ये जानता हूं कि राम का किसी में भी मोह नहीं है, अतएव आप राम को एक बार मोह से रहित होकर देख करके मेरे हाथ में सुपर्द कर दीजिए। 10 दिन की बात है, 10-12 दिन में मैं वापिस ला करके आपको राम को सौंप दूंगा। आप जल्दी कीजिए, समय मत जाने दीजिए। और आज ही मैं राम को ले जाने के लिए आया हूं, मेरे साथ आप राम को विदा कर दीजिए। बड़ी धर्म की बात विश्वामित्र जी ने कही। विश्वामित्र जी ये बात बोल करके चुप हो गए। अब दशरथ जी महाराज वहां पर बैठे बैठे लंबी लंबी सांस लेने लगे और जो है दशरथ जी महाराज थोड़े ही गर्दन लटका दिए। दशरथ जी महाराज ये संज्ञा शून्य हो गए, बेहोश से हो गए। दशरथ जी की ये दशा देखी, दशरथ जी भयभीत हो गए। वो परशुराम जी को, ये विश्वामित्र जी को ज्यादा कहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्या करें, इधर राम का प्रेम है, उधर विश्वामित्र जी का आदर है, विश्वामित्र जी के सामने इतनी बात भी कही है, क्या करें। वो तो बेचारे व्यथित मना हो गए। विश्वामित्र की बातें सुनकर के और नरश्रेष्ठ राज नृपश्रेष्ठ दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे विश्वामित्र जी महाराज, राम तो अभी बच्चा है, अभी तो इसको पूरे 16 वर्ष भी नहीं आए हैं, थोड़ा सी छोटी सी तो उम्र है, इसने कभी किसी के साथ युद्ध किया नहीं है, हमारे अयोध्या पर तो किसी ने आक्रमण किया नहीं, आते न तो ये युद्ध को जानता है, न ये शस्त्र अस्त्र जानता है। एक काम करो महाराज, मेरे पास एक अक्षौहिणी सेना, उसको लेकर के आप जाओ, उसको मैं आपके साथ लेकर चलता हूं, सेना लेकर चलता हूं। मेरे को कई प्रकार के शस्त्र चलाने आते हैं, वो कितने ही मायावी राक्षस इधर उधर छिप जाएंगे तो अभी उनको प्रकट करने के मेरे पास शस्त्र है, मैं चलता हूं। महाराज इमे शूरा विक्रांता, मेरे पास में जो ये शूरवीर सेना है ये मामूली नहीं है, संसार में इनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। मैंने सदा इस सेना के भरोसे अपने राज्य में सुरक्षा देखी है, मैं स्वयं युद्ध करूंगा, जब तक वे दोनों मरने जाएंगे मैं युद्ध करूंगा, और जब तक वे मुझे मारने देंगे तो युद्ध करूंगा। मुझे अयोध्या से मोह नहीं है, मुझे और किसी से मोह नहीं, मुझे राम से मोह है कि राम बेचारा युद्ध करना जानता नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, आपका तो यज्ञ पूरा करवा दूंगा। हे विश्वामित्र जी, आपको तो यज्ञ से मतलब है। अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतु मारसी, मैं चला जाऊंगा, आप राम को ले जाने की बात मत कीजिए। बालक है, शास्त्र और शस्त्र दोनों को जानता नहीं है, ये बल और अबल को भी नहीं जानता, कितना बल है कितना मेरे पास में बल नहीं है, शत्रु के पास कितना बल है कितना उसके पास में कमी का है, ये सब चीजें जानता नहीं है। और राक्षस लोग होते हैं वो तो बड़े कपटता से युद्ध करते हैं, उस कपटता के अंदर युद्ध करने वाले राक्षस के सामने ये राम मेरा ठहरने वाला नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, आप मेरा जीवन यदि देखना चाहते हो तो राम को मेरे से अलग मत करो, आप चतुर्मुखी सेना ले जाओ। मैं 60,000 वर्ष का बुढ़ा हो गया, इस वृद्धावस्था में एक राम का मुख देख करके मुझे सुख मिलता है, और मुझे किस बात का सुख है? ये मेरा बड़ा लड़का है, ये मेरा धर्म प्रधान लड़का है, और इसमें मेरा प्रेम भी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपसे प्रार्थना कि आप राम को मेरे से अलग मत करो। मैं राम से भले ही अलग हो जाऊं, राम मेरे से अलग न हो। देखो, मैं अलग हो जाऊं, राम अलग न हो। कथम प्रमाणा ते चेतन, इन राक्षसों की कौन क्या बात कहे? आप इतना तो बताते हैं कि मैं ये राक्षस है कौन, इनके पीछे से क्या वर्णन है, और इन राक्षसों के पीछे कौन आदमी है? क्योंकि राक्षस ही अपने आप अपनी शक्ति से काम नहीं करते, इनके साथ में कोई ना कोई बड़ा शक्तिमान और कोई होना चाहिए जिसके पीछे मारीच और स्वभाव इतनी उछल कूद करते हैं। मुझे बताओ, ये मारीच और स्वभाव किसके कहने से आपके यज्ञ में बाधा डालते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी, आप तो इतनी बात में डर गए, और मैं पूरी बात कहूंगा तो आप तो न जाने कितने डर जाओगे। तो महाराज जी, तो बताना ही पड़ेगा ना कि मारीच और स्वभाव किसके इशारे पर नाचते हैं, वो किसके इशारे पर नाचते हैं बताए? तुमने पुलस्त्य वंश में उत्पन्न होने वाले रावण के विषय में सुना है, जो लंका का राजा रावण है? हो रावण, हाँ रावण, उस रावण के इशारे से जितने राक्षस हैं सब चारों तरफ घूमते हैं और यज्ञ आगादी में बाधा डालते हैं। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, और उस वरदान के कारण से राक्षस राज रावण अपने घमंड में आकर सब यज्ञों में बाधा पहुंचाता है, ऋषि मुनियों को कष्ट देता है, और यज्ञ के अंदर अनेक प्रकार से विघ्न पैदा करता है। उन्हीं से ही प्रेरित होकर के मारीच और सुबाहु ये हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं। अतः आपको चाहिए कि मारीच और सुबाहु को मार करके आपके बेटे राम के द्वारा रावण को ये चुनौती मिलनी चाहिए कि रावण, तुम जो है ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं राम को ले जाना चाहता हूं। अरे राम, आप तो राजा कह रहे, भाई मैं इतनी देर तक तो मैं कहता था कि मैं चलूं, मेरी सेना चले, अब तो महाराज ने तो मैं चलूंगा न मेरी सेना चलेगी, राम के तो जाने का प्रश्न ही नहीं है, रावण से कौन बैर विरोध मोल ले? महाराज, रावण तो सबसे बड़ा बड़ा बलवान राजा, इंद्रादि देवता भी उसके सामने डरते हैं, हम तो महाराज उसके साथ में नहीं लड़ सकते। देव दानव गंधर्व यक्षा पतंग पन्नगा ये सब उसके सामने थर थराते रहते हैं, हम रावण के सामने नहीं जा सकते। महाराज, मारीच और स्वभाव को मारने का मतलब है कि रावण के साथ बैर लेना, बैर विरोध करना, कि बात तो यही है, बात यही है, तो महाराज मेरे से तो नहीं चला जाएगा। तो महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अब चाहे आप मुझे कुछ भी कहो, चाहे आप मुझे पुत्र मोह में डूबा बा बोल दो, चाहे आप कायर बोल दो, और चाहे आप कुछ भी बोल दो, मैं महाराज ये आफत अपने अयोध्या में नहीं लाना चाहता, इसलिए महाराज आप कोई और उपाय कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप राम को मत ले जाइए। बालम में तनयम ब्रह्मन नहीं बदास्यामि पुत्र का, मैं महाराज दे नहीं सकता हूँ। ये नंद और उपसुंद ये दो बड़े भारी यज्ञ के अंदर बाधा देने वाले लोग थे, और उन्हीं के ही बेटा है ये मारीच और सुबाहु। सुबाहु के बाप का नाम था सुनंद, उसी का ही तो ये है ना लड़का, हाँ उसी का लड़का, नहीं महाराज, मैं तो आपको लंबे लंबे हाथ जोड़ता हूँ। मारीच और सुबाहु दोनों रावण के द्वारा शिक्षित हैं। मैं महाराज किसी प्रकार से खतरा मोल लेना नहीं चाहता हूँ। आपको हाथ जोड़ करके पहले ही बोल देता हूँ ताकि आपको आगे मेरे से आशा ही न रहे। राजा ने जब ये बात कही, विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज अब सोच रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो थोड़ी थोड़ी राजा से कान में कुछ बात कहना चाहते हैं। अब भाई विश्वामित्र जी का आगे राम जी के दशरथ जी के साथ जो संवाद होगा वो बीच के मध्यम विश्राम के बाद आगे की कथा। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग अपने लोगों को सुनने को मिल रहा है। विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी से 10-15 दिन के लिए भगवान श्री राम को मांगा और बता दिया कि मारीच और सुबाहु के द्वारा जो यज्ञ में बाधा पहुंचती है उन दोनों को मारने के लिए हम राम की आवश्यकता समझते हैं। दशरथ जी महाराज इस बात को सुनकर मूर्छित से हो गए। दशरथ जी का इस प्रकार सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो आपका आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा, लेकिन आप अपने रघुवंश की परंपरा के विपरीत कार्य कर रहे हैं और मेरे आदेश का आप पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे वचन देकर के भी आप अपने वचनों से मुकर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन आज मैं इस बात को अपने मन में लेकर जाऊंगा कि दशरथ जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। यदि आप इस मोह के अंदर सुखी रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी की बात है। इस प्रकार परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र के कुपित हो जाने पर देवताओं में भय छा गया, पृथ्वी के ऊपर कंपन हो गया, पृथ्वी में कंपन हो गया, सब प्रकार से सारा संसार भयभीत होने लगा। वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ दशरथ जी को समझाते हुए कहा कि हे महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश की कीर्तिधर हैं, आप धैर्यवान हैं, आपको अपने यहाँ आए हुए ऋषि के सामने की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं चाहिए। संपूर्ण त्रिलोकी में इस बात की आपके लिए महिमा है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं और आपने धर्म के द्वारा राम को प्राप्त किया है। आज आप राम के मुंह में आकर एक ऋषि को दिए हुए वचनों से आप हट रहे हैं, यह उचित नहीं है। एक बात के लिए मैं आपको विश्वास दिला दूं कि चाहे राम शस्त्र को जाने चाहे न जाने, परंतु साक्षात राम विश्वामित्र जी की सहायता से अपना काम पूरा कर पाएंगे, इतना हमको पूर्ण विश्वास है। विश्वामित्र जी महाराज मारीच और सुबाहु का नाश कर सकते हैं, लेकिन वे यज्ञ में बैठे हैं, आते हुए कूप करना उचित नहीं मानते हैं। दूसरी बात है, विश्वामित्र जी के पास बहुत शस्त्र अस्त्र का खजाना है। विश्वामित्र जी मारीच और सुबाहु को मारने के बहाने से आपके सामने ये चर्चा करके राम को ले जाकर राम को सब प्रकार के शस्त्रों की दीक्षा देना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ये चाहते हैं कि अब मेरा शस्त्रों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे तो अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रभु स्मरण करना है। अतएव वे अपने शस्त्र राम को देना चाहते हैं, क्योंकि इन शस्त्रों के द्वारा राम से बहुत काम हो जाएगा। दूसरी बात, आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि देवता हो, ऋषि हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, कोई क्यों न हो, राम के ऊपर किसी का प्रभाव चल नहीं सकता है। ये विश्वामित्र जी स्वयं राजा रह चुके हैं, ये विश्वामित्र जी पहले क्षत्र धर्म में थे, इसलिए इनको इस बात का खूब अच्छी तरह से ज्ञान है। दक्ष की दो कन्या थी, एक का नाम जया, एक का नाम सुप्रभा। इन दोनों से अनेक प्रकार के शस्त्रों का जन्म हुआ है और वो शस्त्र आज विश्वामित्र जी के पास सुरक्षित है। 50 शस्त्र जया से पैदा हुए और 50 शस्त्र ही हमारे सुप्रभा से पैदा हुए। सब प्रकार के शस्त्रों का निक्षेप करना माने शस्त्रों को फेंकना और शस्त्रों का संहार करना, ये दोनों विद्या विश्वामित्र जी को आती है। इसलिए विश्वामित्र जी के साथ यदि राम चले जाते हैं इसमें कोई आपत्ति की बात हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। न किंचित अस्त्यविदितं भूतं भव्यं च राघव। हे राघव, विश्वामित्र जी को आगे की पीछे की सब बातों का ठीक तरह से ज्ञान है, इसलिए आपको राम को भेजने में संदेह नहीं करना चाहिए और आपके पुत्र की कीर्ति बढ़ाने में विश्वामित्र जी का बड़ा सहयोग रहेगा और आगे भी राम के जीवन में विश्वामित्र के बताए हुए शस्त्रों से बड़ा लाभ होने वाला है। न जाने कितना बड़ा सृष्टि का उपकार होगा। अतः आप हम सब लोगों के कहने से बिना किसी संकोच के विश्वामित्र के साथ राम को भेज दीजिए। इस प्रकार से जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्षमा मांगते हुए विश्वामित्र जी से कहा, हे ऋषिवर, बड़ा दुर्लभ पुत्र प्राप्त किया हूं ना और राम के ऊपर मेरा मोह भी बहुत है, इसी कारण से मैंने ये राम को देने में हिचकिचाहट की थी। आप राम को ले जाइए। राम को वहां पर बुलाया, लक्ष्मण जी साथ में अपने आप ही आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि जहां राम जी जाएंगे मैं तो साथ में रहूंगा। फिर माता पिता ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी ने मांगलिक सूक्त पढ़े और मंत्रों के द्वारा उन लोगों का मंगल विधान किया और पिता दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को छाती से लगाकर गुरु जी के हाथ में सुपुर्द कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज ने जो ही राम और लक्ष्मण को अपने पास में आते हुए देखा तो उनका एक तो हृदय प्रेम से भर गया और उधर देवताओं ने धुंधवियां बजा दी। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की कि विश्वामित्र जी के शस्त्र राम जी को मिल जाएंगे और फिर राम जी बड़े सुगमता से रावण आदि पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर रवाना हुए। उस समय में काक पक्ष धरो धन्वी इतंच सौमित्री रणवगार। दोनों के पास में धनुष है, दोनों भाइयों के पास तुणीर है। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे राम जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। इसमें राम और लक्ष्मण की बड़ी विचित्र शोभा हो रही है। दसों दिशाओं में एक दिव्य प्रकाश सा छा गया है। जिस प्रकार से पितामह के पीछे अश्विनी कुमार चलते हो उस प्रकार से आज विश्वामित्र के पीछे दोनों भाई चल रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों के अंदर कवच पहन रखा है, चमड़े का वो कवच जब बाण वगैरह छोड़ने में हाथों में बाधा नहीं पड़ती है। वो कवच पहन रखा है, छाती के ऊपर उन्होंने लोहे का कवच पहन रखा है कि कोई बाण उनकी छाती में न लगे। उनके बगल के अंदर तलवारें लटकी हुई हैं। इस प्रकार से दोनों बालक बहुत सुंदर दीप्तिमान होकर के चल रहे हैं। अभी वे सरयू नदी के किनारे गए हैं, एकांत स्थल देखा। विश्वामित्र जी ने देखा कि कोई सुनने वाला नहीं है। उस समय में विश्वामित्र जी ने प्रेम के साथ कहा कि राम, सरयू नदी के जल का स्पर्श करो, स्पर्श करके अंगन्यास करो और अंगन्यास करके बड़े शांति के साथ बैठ जाओ। मैं तुम्हें बला और अति बला, ये दो विद्याएं हैं, दोनों विद्याओं का मैं तुमको पाठ पढ़ाता हूँ। जिसको बला और अबला, बला और अति बला, इन दोनों का ज्ञान हो जाता है वह योद्धा कभी भी एक तो परिश्रम के द्वारा थकावट नहीं महसूस करता, कितना ही काम करो बताए उसमें बुखार नहीं आता, उसके शरीर की कांति बिगड़ती नहीं, वो सोता भी रहे तो भी शत्रु उसका बिगाड़ नहीं कर सकते। और उसके समान संसार में कोई दूसरा योद्धा बराबरी का दिखाई नहीं देता है। त्रिलोकी के अंदर बला और अबला को धारण करने के पश्चात सबसे बड़े विजेता के रूप में प्रसिद्धि हो जाती है। तुम्हारे सौभाग्य में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे चरित्र में बहुत जो है विलक्षणता बला और अबला, बला और अति बला विद्या से आ जाएगी।